आगे है आयत 28 से 34, रुकू नंबर 17। अल्लाह के इनामात और इंसान की नाशुक्री। अलम तर इल्लज़ीन बदलू नेमत अल्लाह, क्या आपने इन लोगों की तरफ नज़र नहीं डाली जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले नाशुक्री की और अपनी कौम को हलाकत के घर में ला उतारा। आप कहते हैं यहाँ अल्लाह की नेमत क्या है? नबी सल्लम। और ये लोग कौन से हैं? मक्का वाले। अल्लाह ने मक्का वालों के पास अपना नबी भेज दिया और लोगों ने उनकी कदर ना की, हिजरत पे मजबूर कर दिया। अगर मक्का वाले नबी का साथ दे देते तो मदीना नहीं था बनना। शायद कभी कभी कुछ लोगों के ना कदरे रवैये के नतीजे में दूसरी जगह आबाद हो जाती हैं, वरना दिल तो कभी नहीं चाहता कि किसी जगह को छोड़कर एक से दूसरी जगह जाएं। मक्का के लिए अल्लाह के नबी रोते थे। जब हिजरत के मौके पे उस मुकाम पे आए जहाँ दोबारा मक्का नज़र आ रहा था, तब रोने लगे। कहे मक्का मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर यहाँ के रहने वाले ऐसा ना करते। बुखार होने लगा था। आप देखिए ये जगहों की भी मोहब्बत दिल से निकालनी पड़ती है अल्लाह के रास्ते के बनने के लिए। इसीलिए ना शुक्री और ना कदरी की बात करके यहाँ अल्लाह ने क्या बताया कि अपनी कौम को हलाकत में डाल दिया। आप ज़रा सोचिए, अगर अल्लाह के नबी आखिरी दम तक मक्का में रहते तो सबसे पहले बताइए कि आपकी कब्र मुबारक कहाँ होती? मक्का में होती। छीन लिया ना ये हक लोगों ने अपने आप से। अल्लाह हु अकबर। और कौम को हलाकत में कैसे डाला? कि नबी के फैज से फैज नहीं लिया। क्या हुआ? कहाँ उतारा कौम को? यानी दोजख में, जिसमें ये सब जाएंगे, जो बदतरीन ठिकाना है। उन्होंने अल्लाह के हमसर बना लिए कि लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं। आप कह दीजिए खैर मज़े कर लो, तुम्हारी बाजगश तो आखिर जहन्नुम है। मेरे ईमानदार बंदों से कह दीजिए कि नमाजों को कायम रखें और जो कुछ हमने उनको दे रखा है इसमें से कुछ न कुछ पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करते रहें, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें न खरीदो फरोख्त होगी और ना दोस्ती और ना मोहब्बत। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और आसमानों से बारिश बरसा कर इसके ज़रिए तुम्हारी रोज़ी के लिए फल निकाले और कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया कि दरियाओं में इसके हुक्म से चलें फिरें। इसी ने नदियाँ और नहरें तुम्हारे इख्तियार में कर दी। इसी ने तुम्हारे लिए सूरज चाँद को मुसख़्खर कर दिया कि बराबर ही चल रहे हैं और रात दिन को भी तुम्हारे काम में लगा रखा है। इसने तुम्हें तुम्हारी मुँह मांगी कुल चीज़ों में से दे रखा है। फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम, अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनना चाहो तो इनको पूरा गिन नहीं सकते। यकीनन इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। क्या सीखा? अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना, अपनी कौम को हलाकत से बचाना, अल्लाह का शरीक नहीं बनाना, जुल्म नहीं करना, खुले और छुपे खर्च करना और नमाज कायम रखना। जब आप ये सारे काम कर लेंगे अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा। आखिर एक इब्राहिम अकेले ही तो नहीं थे ऐसे जिनको अल्लाह ने चुना। आपको मुझे भी अल्लाह ताला इसी तरह से चुन सकता है और इसी तरह से आप जितना ज़्यादा अल्लाह की तरफ आते जाएंगे अल्लाह ताला आपकी तरफ आता जाएगा। अब आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुछ खूबसूरत दुआओं का तस्करा है जिसका ज़िक्र पहले भी हुआ। आयत नंबर 35 से 41, रुकू नंबर 18 है। इब्राहिम की दुआओं से मरकज़ इस्लाम का क़याम बना। अल्लाह हमें भी अच्छी खूबसूरत दुआएं करने वाला बना दे। वह इस क़ाल इब्राहिम और अब बिजल, और इब्राहिम की ये दुआ भी याद करो जब उन्होंने कहा कि मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से पना दे। ऐ मेरे पालने वाले माबूद, इन्होंने तो बहुत से लोगों को राह से भटका दिया, बस मेरी ताबेदारी करने वाला मेरा है और जो मेरी नाफरमानी करे तो तू तो बहुत माफ़ करने और रहम करने वाला है और करम करने वाला है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद यानी हजरत इस्माइल अपनी कुछ औलाद इस बेखेती की वादी में तेरे हुरमत वाले घर के करीब बसाई है। ऐ हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखें, बस तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों की रोज़ियाँ अनायत फरमा ताकि ये शुक्र गुजारी करें। ऐ हमारे परवरदिगार, तू खूब जानता है हम जो कुछ छुपाएं और जो ज़ाहिर करें। ज़मीन आसमान की कोई चीज़ अल्लाह पर पोशीदा नहीं। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता फरमाए। कुछ शक नहीं कि मेरा पालने वाला अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है। اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ ابراہیم کی خوبصورت دعاؤں میں سے ایک دعا، آیت 35 میں، رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ اے اللہ، اس شہر کو ٹینشن فری زون بنا دے۔ وجنبنی، اور اجتناب کرنے والا، بنی یا مجھ کو اور میرے بچوں کو، کس سے؟ ان نعبد الاصنام، کیا ہم بتوں کو پوچھیں؟ کیا آج کے مسلمان کو بھی یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے؟ سچ بتاؤں، آج ان دعاؤں کے بغیر ہماری نسلیں نہیں بچیں گی۔ وہاں تو نقلی بت تھے نا، یہاں اصلی ہیں۔ اس دور میں تو لکڑیوں اور پتھروں کے بت پوجے جاتے تھے، آج تو اصلی انسان وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کی بنا ہے۔ اور یہ دعائیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ دین اور دنیا دونوں مانگی، لیکن پرائیورٹی دین کو دی۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے گھروں کو بات کرنے کے لیے کسی حد تک تو اپنے گھروں کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک نئی نسل صحراؤں میں پروان چڑھائی تاکہ فطرت پہ پلے اور ابراہیم کی دعاؤں کو قبول کروانے میں مددگار ہو۔ آپ، میں اس مشکل جملے سے کیا سمجھے؟ آپ نے بچوں کے زیادہ لاڈ مت دیکھے، عیش کوش کر دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تانہ‌سانی۔ کیا آج ہمارے بچے تانہ‌سانی ہو گئے؟ بوڑھا باپ آج بھی زیادہ کام کرتا ہے، اور اگر گھر میں دادا ہے نا تو وہ گھر کا سب سے ایکٹیو پرسن۔ باپ ہو سکتا ہے گھاس بھی کاٹ لے اور بیٹا لقمہ بھی نہ توڑے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کس نسل سے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ والے بچے نکلے، تو بالکل رف اینڈ ٹف پالیے مجاہدانہ زندگی۔ بنی اسماعیل خشک اور غیر آباد بیابان میں بسائے گئے، یہ اللہ کا پروگرام تھا۔ ایسے لوگ فطرت کی پکار پہ توحید کے نغمے کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ جتنے بچے نعمتوں میں پلتے ہیں اتنے بگڑتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ دوبارہ شرک کب آیا؟ جب وہاں پھلانے لگ گئے۔ آج کیا ہے؟ بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو آپ اور میں ذرا سا اس سارے سے اپنے عمل کے نقطے لے کر اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سے بھی ایک نسل تیار کروا۔ آپ کو میرا کام اس وقت پتہ کیا ہے؟ نسل سازی۔ بچے پیدا کوئی بھی کرے، آپ نے میں نے ان بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اور میں اکثر آپ سے کہتی ہوں، اپنے چھوٹے بچوں کو لایا کریں۔ وہ بچے جو بیٹھ سکتے ہیں نا، یعنی میرا خیال ہے 5-6 سال کا بچہ بھی پیچھے آرام سے آپ کاغذ قلم دے دے بیٹھ جائے گا۔ بچوں کو ساتھ رکھا کریں۔ رات کو تراویح اور خاص طور پہ جہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا خلاصہ، بچوں کو لے کے جائیں، ان کو کاپیاں پین لے کے جائیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم جو نکلا تھا نا، تھا تو یہ معجزہ، لیکن اس کے پیچھے ماں اور باپ کی قربانی تھی۔ آج جو ماں باپ اپنے بچوں کے ذرا سے روزی پانی کو کم کریں گے نا، اللہ ان کو زمزم کے معجزے دے گا۔ کر کے دیکھیے، غیر معمولی نعمتیں ملتی ہیں نا تو انسان کے اندر شکر کا غیر معمولی جذبہ ابھرتا ہے۔ یہ وہ حکمت تھی ابراہیم کی اس دعا میں کہ صحرا میں ان کو پھلوں کی روزی دے۔ اور بڑھاپے کی اولاد دل میں رہتی ہے، ماں اس کو اٹھا اٹھا کے پھرتی ہیں، سوتے ہوئے میں بھی اس کو دیکھتی رہتی ہیں، یہ کرتا کیا ہے؟ تو ابراہیم کی ان دعاؤں میں وہ سارے جذبے آپ محسوس کیجیے جو ایک سچے بندے کے دل سے اللہ کی محبت کے بعد پھوٹتے ہیں ایک چشمے کی طرح۔ جس کے اندر اپنے ابدیت کا احساس ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے سامنے اس کا اختیار کرتا ہے، اور پھر وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اللہ میرا حق نہیں ہے، بس تو اپنی عطا سے دے دے۔ میں اور آپ بھی آج کے، اللہ ہماری اوقات تو نہیں ہے اتنی بڑی بڑی دعائیں کرنے کی، لیکن ہمارے ذریعے سے بھی کچھ زمزم کے چشمے جاری کروا دے۔ توفیق مانگیے، دعا مانگیے، اللہ آپ کو دے گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا صرف ان کو آخرت دینا اور دنیا میں روکھی سوکھی کھائیں، اللہ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، ان کی دنیا بھی اچھی ہو۔ دربنا آتی نہ پھر دنیا سے نہ پھر آخرت، لیکن سب سے بڑا ان کا مسئلہ دنیا نہ ہو، آخرت ہو۔ آج بھی جو ایسی دعائیں کرے گا جو پیغمبروں نے کر کے سکھا دی، तो अल्लाह उनको ज़रूर कबूल करेगा। अब बिल्कुल आगे सूरत का जो ततीमा होगा उसमें आप कुछ चीज़ें देखेंगे, लेकिन अल्लाह की रज़ा ले कुछ अमल नोट कीजिए। अमन की दुआएं करना है, औलाद के लिए शिरक से बचने की दुआएं करनी है, अंबिया की पैरवी करनी है, वालदैन की माफ़ी की भी दुआएं करनी है, और औलाद के नमाज कायम करने की दुआएं करनी है, और औलाद के शुक्रगुजार बनने की दुआएं करनी है। आगे आयत 42 से 52 रुकू 19, क़्यामत की मंजर कशी और ज़ालिमों की हसरतें। वला तहसबन्नल्लाह गाफिला, ना इंसाफों के आमाल से अल्लाह को गाफिल ना समझो, वो तो इन्हें इस दिन तक मोहलत दिए हुए हैं जिस दिन आँखें फटी की फटी रह जाएंगी, वो अपने सर ऊपर उठाए दौड़ भाग रहे होंगे, खुद अपनी तरफ भी इनकी निगाहें ना लौटेंगी और इनके दिल खाली और उड़े हुए होंगे। कितनी वहशत होगी उस दिन। लोगों को उस दिन से होशियार कर दे जबकि इनके पास वो अजाब आ जाएगा, और जालिम कहेंगे कि हमारे रब हमें बहुत थोड़े करीब के वक्त तक की मोहलत ही दे दे कि हम तेरी तबलीग मान लें और तेरे पैगंबरों की ताबेदारी में लग जाएं। क्या तुम इससे पहले भी कसमें नहीं खा रहे थे कि तुम्हारे लिए दुनिया से पलटना ही नहीं, और क्या तुम इन लोगों के घरों में रहते बसते न थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, और क्या तुम पर वो मामला खुला नहीं था कि हमने इनके साथ क्या कुछ किया। हमने तो तुम्हारे सुझाने को बहुत सी मिसालें बयान कर दी थी, ये अपनी अपनी चालें चल रहे हैं और अल्लाह को इनकी तमाम चालों का इल्म है, और इनकी चालें ऐसी न थीं कि इनसे पहाड़ अपनी जगह से टल जाएं। आप हरगिज़ ख्याल न करें कि अल्लाह अपने नबियों से वादा खिलाफी करेगा, अल्लाह ताला बहुत ही गालिब और बदला लेने वाला है। जिस दिन ज़मीन इस ज़मीन के सिवा और ही बदल दी जाएगी और आसमान भी, और सब सब अल्लाह वाहिद गलबे वाले के रूबरू हो जाएंगे, फिर उस दिन आप गुनाहगारों को देखेंगे कि वो जंजीरों में मिले जुले एक वक्त जकड़े हुए होंगे, इनके लिबास गंदक के होंगे और आग इनके चेहरों पर चढ़ी हुई होगी। ये इसलिए कि अल्लाह ताला हर शख्स को इसके किए हुए आमाल का बदला दे, बेशक अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। इलाज क्या है आखिरी आयत में? हाजा बलाग, ये कुरान तमाम लोगों के लिए इत्तला नामा, अनाउंसमेंट्स, खबरनामा, न्यूज़ चैनल, न्यूज़ बुलेटिन। क्या है खबर? कि इसके ज़रिए से वो होशियार कर दिए जाएं और बखूबी मालूम कर लें कि अल्लाह एक ही माबूद है, और ताकि अक्लमंद लोग समझ सोच लें। ना बड़ा पैगाम है हाज़ा बलाग, इसको पहुँचाइए, इसको पहुँचाए बग़ैर दुनिया नहीं बदलेगी। आपका मेरा यही काम है, उम्मत मुस्लिमा का यही मनसब है। कुंतुम खैरा उम्मत यही है, कज़ालिका जालनाकुम उम्मता यही है, हुवा समाकुमुल मुस्लिमीन यही है, लोगों की आखरत की फ़िक्र करें। ऐसा ना हो कि दूसरों की दुनिया बनाते बनाते अपनी आखरत को भी गाड़ दें। आप देखिए जहन्नम के जो मनाजिर है उसको सोच कर छुरछुरी नहीं आती। एसी बंद हो जाए तो देखें हम कैसे सुकून से बैठे, फिर सर के ऊपर से छत हट जाए तो कैसे हम परेशान हो। दुनिया की थोड़ी सी गर्मी ना बर्दाश्त हो तो क्या आखरत की बर्दाश्त होगी। तो अपने लिए अमल के नुक्ते लेते हैं, अल्लाह की ढील को रहमत नहीं समझना, अल्लाह ताला की दावत को कबूल करना है, रसूलों की पैरवी करनी है, बुरी चालें नहीं चलनी, इंसानों को बुरे अंजाम से डराना है और नसीहत हासिल करनी है। सूरत इब्राहिम भी पूरी हुई और एक आयत के साथ पारा भी पूरा हो रहा है। पैगाम क्या है सूरत इब्राहिम का? अबा उजताद के तरीके को छोड़कर इलाहुन वाहिदुन का तरीका इख्तियार करना है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह। शैतान के फरेब में आकर अपनी आखरत ख़राब नहीं करनी, क्योंकि क़्यामत के दिन वो धोखा दे देगा। ज़िंदगी में अल्लाह और रसूल की गवाही देनी है ताकि कब्र का मामला आसान हो, और युसब्बितुल्लाहल्लज़ीना मनु वाली बात हमें मिले। अपना मुहासबा भी करते हैं, क्या मैं सब्र और शुक्र की मिसाल बनने की कोशिश करती हूँ? क्या मेरा हर अमल इस बात की गवाही देता है कि मैं अल्लाह को मानती हूँ? चंद सेकंड सोचें तो घबराहट होने लगेगी। क्या मैंने आखिरत के लिए तैयारी कर ली है? और अगर जवाब यस में है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, नो में है तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें बदल दे। आगे सूरत हिजर है, एक कौम के नाम पे, एक ही आयत है इसमें, इस बारे में 15वें नंबर की सूरह। टॉपिक लिख लीजिए, कुरान की कोई भी बात मुश्किल और उलझी हुई नहीं। अलिफ लाम रॉ, तिलका आयातुल किताबी व कुरआने मुबीन। अलिफ लाम रॉ हरूफ मुकत्तात हैं, ये आयात हैं किताब इलाही की और कुरआने मुबीन की। क्या पता चला कि इस किताब की कदर करो। ये किताब है जो इंसानों को इस दुनिया में आने का मकसद भी बताती है, और यही किताब है जो दुनिया में जीने का तरीका भी सिखाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे पारा पूरा होता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुद से सोचिए, क्या समझा, क्या सीखा, क्या पाया।